जो दीन को नेता देगा वो आगे पीछे चल के इस रास्ते पे सक्सेस होगा, और जो दुनिया को बरीता देगा वो कभी सक्सेस होगा। तो शुरू से अलग डाल लीजिए कि हमें सब दीन की वरीता देनी है। अब एक साहब कह रहे थे कि सब 10 साल से हम रह रहे हैं, राज्यभर नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि इतवार को ही एक दिन मिलता है आराम का, इसलिए भी क्या उम्मीद कर सकते हैं। कि सब भल बस ये कह सकते हैं, हाँ सब एक लिस्ट में हमने नाम लिखा रखा है, यानी पूरे 10 साल। कल फोन आया, दुख भी हुआ, हम भाई वहां चले जाया करो, तो जब भी आप देखेंगे जिस शख्स ने दुनिया को वरीता दी वो उस रास्ते पर कभी नहीं चला। जिस शख्स के मन में किसी किस्म का कपट है वो इस रास्ते पर चल ही नहीं सकता। और यही तुलसीदास जी, सरल स्वभाव हो, मन में कोई कपट ना हो। कपट का मतलब यह है दिखावा है। जैसे गुरुदेव से किसी ने पूछा एक मरते तो उन्होंने कहा ना बत्ता जिन्ना सेठ को छोड़ के हमें किसी बच्चों से उनके कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन हाँ वो श्यामलाल के लड़के हैं कि हमदर्दी। कितना स्पष्ट, चाहे आप उन्हें माने ना माने, जब कोई कुछ कहते थे तो उन्होंने कहा नहीं बेटे हमें तुम लोगों से बस इतनी हमदर्दी है कि तुम श्यामलाल की औलाद हो, इसके अलावा कोई प्रेम नहीं है। वो ये भी कह सकते थे नहीं बेटे तुम श्यामलाल के लड़के, हम थोड़ा प्रेम करते हैं और तुम तो ये। तो जो चीज मन में किसी किस्म का कपट होगा वो इस रास्ते पर चल ही नहीं सकता। और उनको हमने देखा कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी को ही पसंद करते थे। बाबूजी इसलिए नहीं डांटते थे हमको, इसलिए डांटते थे ये सब चीजें कहना नहीं चाहिए। जब भी वो उन्हें किसी के बारे में पूछा हमने प्राक से कह दिया कभी, तो बाबूजी हमेशा कहते थे बेटे श्यामलाल वैसे तुम ठीक हो, नहीं देखो कितना साफ दिल इंसान है कि वो ये नहीं सोचता कि हमको बुरा लगेगा या तुमको बुरा लगेगा, उससे बुरा लगे कोई वो नहीं थी। तो अगर कोई भी आप में कपट है तो आप इस रास्ते के हकदार होंगे। ये तीन शख्स जिनने दुनिया में वरीयता दी और दीन को माइनस किया वो इस रास्ते पे नहीं टिक सकते। जिनके मन में कोई भी कपट है वो इस रास्ते पे नहीं टिक सकते, और दूसरे दिखावा नहीं होना चाहिए। प्रेम की सूखी रोटी अच्छी होती है बनस्पत उधार लेके और दिखावे में आप उन बाबूजी महाराज साहब की गुरुदेव की बड़ी सख्त हिदायत थी। तो जितना हो सके उन नियमों को फॉलो करिए जिसको चल के लोगों को सक्सेस प्राप्त। और उनमें कोई धोखा नहीं, उसमें कोई धोखा नहीं है, किसी को शुभा नहीं होनी चाहिए, यही फेथ है, यही विश्वास। और इसीलिए किसी बुजुर्गों की लाइफ हिस्ट्री पढ़ने में कोई वो नहीं, सबकी पढ़ें, बस प्रैक्टिकल वो करे, अभ्यास वो करे जो उसके गुरु ने बताया। लाइफ हिस्ट्री पढ़ने से ये मालूम होता है कि इनका कैसे ही रहे थे, तो आपको जनरल सबका एक ही समझेगा, शारीरिक कष्ट भी रहा उन लोग को, पैसे के भी कष्ट रहे, और जो टिक गए वो इस रास्ते पे चलते रहे। और खाली जिक्र करने का और लिखने का मतलब, मान लीजिए कोई चीज आप जानते हैं और आपने नहीं लिखी, तो आप ही ने तो मतलब गुनहगार आप हुए, दूसरा तो नहीं हुआ। और इसी ख्याल से स्मृति थी, भाई साहब की यादें थी कि जो जरूरी नहीं है सब पे एक सी, उसे किसी और चीज से याद आती है, किसी से और आती है, तो सबको मिलके ये हो जाएगा कि सब चीज का आपको उनकी याद करने का एक जरिए मिल जाएगा। और फिर पढ़ें रामायण को, तुमने सबसे उत्तम नंबर वन की भक्ति है संतों का संग, ताकि आपको उनकी याद आती रहे। और यही कहते हैं कुछ नहीं करना है, कि खाली आप अपने गुरु को हर वक्त याद करते रहिए, नाम का जाप करते रहिए, बची हुई चीजें खाली मन के उसमें है। दूसरी चीज उनका जिक्र करना, जिक्र करेंगे तो आपको उनकी याद ताजा हो जाएगी और दूसरों को आप एक बीज बो देंगे जो समय आने पर पलता होगा। मान लीजिए लाला जी महाराज साहब का, चाची जी महाराज साहब का, ताऊ जी का जिक्र बाऊ जी ना करते तो हम लोगों को क्या मतलब था, लेकिन इतना जिक्र किया लगता था कि हमारे ही योग में हो। और जो लोग घेर ओर के करते हैं वो अपने गुरुदेव का ज्यादा जिक्र ही नहीं करते, उतनी सोचते हैं कि हमको ऐसा ना हो किसी के पास। कंट्रोल अभ्यास ये सब पांचवी छठी श्रेणी में, तो जब हम पांचवी छठी श्रेणी का काम करेंगे तो कैसे। गुरुदेव हमारे कहते थे बेटे इस धोखेबाज मन पर कभी भरोसा मत करना, किस वो धोखा हो जाए, अपने गुरु पर तुम भरोसा कर सकते हो, किस वक्त कहां ले जाके पटक दे कोई वो नहीं, तो उस पर तुम भरोसा करते हो। अगर बाबू जी की आपने लाइफ हिस्ट्री, तुमने कहा अपनी हस्ती को मिटा दो, ये समझो गुरु काम कर रहे हैं, हमने यही किया, जाके बैठ जाते थे और फिर उनकी ब्रह्मत का तमाशा थे। दोनों चीजें एक ही है, और जब तक अपने मैं को नहीं मिटा देंगे तब तक वो कोई शब्द बाबू जी से वास्ता रखता है, और वो कहता है साहब हमें लाला जी महाराज से प्रेम है, उसके बाद धोखे क्यों पूछे, उनकी इज्जत हो सकती है, प्रेम नहीं हो सकता। दर्शन देने का मतलब ये है कि आपके दिमाग में कोई ना किसी सबकॉन्शियस माइंड में उनके बारे में कुछ बैठा था, उनके दर्शन प्राप्त, गुरु के दर्शन तो आपको हर वक्त तो खुली आंख होने चाहिए, बंद आंख की भी जरूरत नहीं है। यही असली प्रेम है, यही अपने को फिरा करना है। साल भर में 3 बार का दर्शन हुआ, कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं? एक पढ़ते जाने में कोई कहीं भी समाधि पर चले जाए, कोई हर्जा नहीं है। उसके बाद उधर से निकले तो दूसरी बात है, अदरवाइज कोई नीड नहीं है। तो उन्हें से धंधा बना दिए, सब समाधि पर जाएंगे वहां। आपको गलत ख्याल है, जब तक आपका गुरु साथ नहीं होगा कोई रहमत नहीं होगी, और गुरु तभी साथ होगा जब आप उस गुरु से याद करते रहते। प्रैक्टिकली इसीलिए बाबा जी ने कहा कि साल में एक पढ़ते जाना, फतेहगढ़ हमारे, ताकि उनकी याद आती। कहीं नहीं लिखा है कि आप चाहते हैं, क्योंकि हम लोग जाते थे, चाचा जी महाराज साहब ने दिया करके इसलिए जाते हैं। हम दिन भर चाचा जी महाराज साहब को रटते रहे, हमें कोई फायदा, जो भी वास्ता होगा वो ताऊ जी बाऊ जी की वजह से होगा। ये तो लोग कहते हैं सब जा रहे हैं। हाँ, ये भी कहा था साथ साथ में, वहां तक जा रहे बेटे तो वहां जाने में कोई हर्जा। पिछले दिन में एक साहब को फोन आया, सर हम कई मर्द मुरादुल्ला साहब की समाधि पे गए हैं और नहीं मिल रही, हमका इसलिए नहीं मिल रही है कि आपके साथ जो है उनका ख्याल अच्छा नहीं है, उनका जाने का। और वहीं खड़े हुए थे, यानी खड़े भी समाधि के वाली रोड पर थे, लेकिन समाधि नहीं मिली। हमारा स्वयं का एक्सपीरियंस है कि हम लोग ट्रेन से कायमगंज गए, एक साहब, नाम लेना मुनासिब नहीं, वो हमारे पीछे जी हजूरी में लग गए घूमते फिरे, और कहीं अहमद अली साहब की समाधि नहीं मिली। अप्रैल में अच्छी खासी गर्मी हो जाती थी, फिर हमने उनसे कहा आप ऐसा करें, चले लोगों से कहें खाना ना खाएं, और उनके जाते ही जीव पीछे पलटे तो देखा समाधि के पास खड़े हो। तो किसी का ख्याल अगर जरा सा भी होगा, ना कोई फायदा होगा ना किसी। और यही वजह थी बाबू जी पहले नहीं ले जाते थे सब लोगों को। जब उनने देखा कि लाला जी महाराज साहब ने कहा भाई हमने तुम्हारे सब आदमी, तब उनने कहा बेटे जाते हो तो उन दोनों जगह भी उतने ही पैसे में हो जाएगा, जरूर तो चले जाएगा। कभी किसी सुनने नहीं कहा कि साहब तुम सेपरेट वहां जाना, उससे ज्यादा फायदा इस बात पर होगा कि आप अपने गुरु के ख्याल मारो। उनकी उनकी वजह से आपको आशीर्वाद मिल जाएगा उनका, रूहानी फायदा नहीं हो सकता। रूहानी फायदा आपको जीवित गुरु से ही हो सकता, क्योंकि वहां भी आपका बीच में मन शामिल होगा। ये शुभ होगा कि साहब ये तो है नहीं, ये सही है नहीं है। और इसीलिए गुरुदेव कहते थे बेटे धोखेबाज मन पर कभी भरोसा नहीं। हमेशा उन्होंने कहा कि बेटे अगर लाला जी महाराज साहब नहीं होते तो हम कहीं के नहीं रहते। ये वो संत थे जो पैदाइशी थे और जो लाला जी महाराज साहब के प्रिय लोगों में से थे। मॉरल ये था ये इसलिए नहीं किसी के बारे में, मौलवी साहब, मौलवी अब्दुल गनी साहब, लाला जी महाराज साहब, चाचा जी महाराज साहब, सब बाहुबली मोहनलाल जी को बहुत मानते थे। कोई शख्स ऐसा नहीं था जिसकी इजाजत उन पर नहीं था। खाली इनकी वाइफ एक मरतब बगैर कहे उनसे पूछे जिज्जी से, लाला जी महाराज साहब की वाइफ से, मैं के चली गई, लाला जी महाराज चाचा जी महाराज साहब छोड़ के चले। बाबू जी बताते थे कि बेटे वो मुंशी बाबू की तरफ से बाली में, और आज देख लीजिए मुंशी बाबू का दादा नाम है पनपुर, और कह रहे बेटे हमने देखा है एक कमरे का मकान था और लू में पड़े रहते थे। हम लोगों ने कहा माफ कर दीजिए उन्हें, मैं बुजुर्ग अपनी बदनामी सुन सकता हूँ, अपनी तोहिन में बुजुर्गों की नहीं सुन सकता, और कुछ नहीं उनको हमेशा बड़े मियाँ कहा करते थे। बोले बड़े मियाँ घर में बुजुर्ग कौन है? तो उनका जिज्जी, उनका तुम्हारी बीवी कैसे चली गई बगैर कहे उनसे, जब उनने मना किया और फिर कभी पलट के नहीं किया। उनके ज्यादा सुदाद भी थे उनके होते तो देखिए कितना बड़ा मॉरल था। और एक्चुअली यही असल त्याग होता है। किसी चीज को, गलत चीज को अगर हम सपोर्ट करेंगे इसी तरह, हापुड़ के सुरेश बाबू से छोड़ के चले गए इनकी बीवी, इनका भी झूठे ही आप कह दीजिए उन्हें ना बेटी, हम ये नहीं कहेंगे कि हम इनको दीक्षा देने जा रहे हैं या इनको सत्संग की जरूरत है, हम ही झूठ बोलेंगे सोसाइटी खराब हो जाएगी। उनकी बीमारी में बराबर प्रार्थना करते थे, रोज हापुड़ भेजा करते थे प्रसाद। उनकी वाइफ और वो खुद रियलाइज करते थे कि हमारी जो वो है, लेकिन रियलिटी और सही को सही। तो जब हम ही और आप उन चीजों को जो उनने मना किया करेंगे तो दूसरे तो ऑटोमेटिक करने लगेंगे, दूसरे ऑटोमेटिक करने लगेंगे, और किसी न किसी फॉर्म में। तंगी बहुत थी, एक मरते सरदार जी भाई साहब ने कहा था खिचड़ी बने, पैसे की दिक्कत, खिचड़ी बड़ी मिलना है। हम लोग की तरफ के लोग वो नहीं खाते थे, चावल कभी नहीं खाते थे। दूसरे दिन गुरुदेव ने कहा कि भाई देखो उनने भी लिखा है भूखे भजन न हो गोपाला, ये लो अपनी कंठी पर। उनका लिहाजा जो भी हो बजाय सब्जी के खाली दाल बन जाए लेकिन रोटी। तो हमेशा आदमियों को प्रैक्टिकल होना चाहिए कि किस चीज से। अब उधर के लोग खाते ही नहीं थे, जैसे ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के लोग बगैर चावल के नहीं रहते थे, 39 से लेके 45 तक कभी सिकंदराबाद में चावल नहीं बना, तो ज्यादातर लोग उधर ही के आते थे। जब ये बनारस के लोग आते थे सबसे पहले अलार्म होता था, गुरुदेव कहते थे भाई पूरब के लोग आ गए हैं चावल बन गए। तो जब तक आपको अक्सर कहते थे बाबूजी कहते थे बेटे पेट की आग ऐसी होती है जो आदमी को गुनाह के रास्ते पर, परमार्थ तो छोड़ो गुनाह के रास्ते पर भी ले आती है। खाली इसलिए कि जो मॉरल उन लोगों ने किया है, हमें असल की नकल करनी है, और नकल ऐसी करनी है कि लोग ये समझे हूबहू मिल गए उन सब, उनकी औलाद है। उन्होंने कहा क्यों नहीं होंगे साहब, उनकी हूबहू हुई। और उसके लिए हर व्यक्ति को कोशिश करके उनके साथ रहे हो, उनकी किताबें पढ़ी हो, वैसे बनने कोशिश। जरा सी चीजों पर लोग उधार ले लेते हैं। लाला जी महाराज साहब ने लिखा है, लड़की की शादी का पढ़ाई की शादी का उधार के अलावा किसी का उधार नहीं मिलता। ये जितने देखिए ट्रैक्टर वाले हैं, सबके ट्रैक्टर इसी वक्त जाते हैं, जमीने बिकती हैं, उधार नहीं ले पाते, निपटा पाते। उन सब हम लोन ले लिया है। हम लोग को ये खेत इसीलिए मिल गया कि उनके ट्रैक्टर का होता, जबकि देखिए वेल ऑफ व्यक्ति जमीन है। लेकिन ये कानून कुदरत है जो लोगों ने वो किया, यानी आज भी उन लोगों को 25-30 बीघा में जमीन है। लेकिन जिस इधार को आपने किसी फॉर्म में लिया होगा, इन दो के अलावा आप देख लीजिएगा किसी का नहीं मिलता, नॉट ए सिंगल पर्ट। उनने उसी को एक लाइन में, तब आप ये रियलाइज करेंगे साहब इनने एक एक चीज कही। और जब किसी ने पढ़ाई के लिए लिया होता, लड़की की शादी के लिए, तो उन्हें कभी तराशा नहीं होता। ताऊ जी हमदर्दी में थे ही। एक लड़का था बीमार पड़ा, उसको दवाई दे आए। जब लाला जी महाराज साहब पहुंचे तो उन्होंने देखा तो पूछा, ये कौन दवाई दे गया? उन्होंने श्री कृष्ण लाए थे, दवाई दे गए। उन्होंने देखा उसके हाथ में घड़ी बनी हुई है। उनका बेटे तुम झूठे दिखावा के चक्कर में इस लड़के को बर्बाद कर रहे हो, उसे इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि तुमको हमदर्दी और प्रेम का मादा है, इसलिए बाद में ताऊजी ने ही बताया कि बेटे वो हमसे पैसे ले जाता था और अपने घर पर भेज देता था, हमसे कहता काम हो। तो उन लोगों के ये चीजें खूब सोच समझ के लिखी थी और उन्हीं को अपनाते चले, उन्हीं को अपनाते चले जाइए तो कभी धोखा नहीं होगा, उन्हीं पर भरोसा रखिए। और उसकी लिविंग एग्जाम्पल यही है, इसलिए बताते हैं कि आप लोगों ने कि भंडारे में फतेहगढ़ के 3-4 लाख रुपया खर्च होता है और माता जी परम पूज्य लाला जी महाराज साहब के भरोसे पे बगैर किसी पैसे और उसके भंडार, और 1-2 साल नहीं कि धोखा हो, पूरे 54 साल तक ये खाली आशीर्वाद पर चलता है, ये खाली आशीर्वाद पर चलता है। जिज्जी ने 19 साल तक भंडारा चलाया। उस घर की हालत हम लोगों को बड़ी अच्छी तरह पता है। इनसे हम लोगों ने पूछा, जिज्जी से बाबूजी ताऊजी ने पूछा, वक्त आखिर है कि किसी को ना 100 किसी का पैसा नहीं, उनकी दया से किसी का एक ढेला हमको उधार नहीं। इतने बड़े परिवार को पाला, सब कुछ किया, और फॉलो करने का ही मतलब ये है किसी के नक्शे कदम पर चलने के उसके पैर दिखाई के ऊपर आपके पैर पड़े और उसके निशान मिट जाए, आपके निशान बने रहे। बचा हुआ ऑर्गेनाइजेशन है सत्संग नहीं। आदमी बनना बहुत मुश्किल होता है। हमें हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि कोशिश करके पहले, बेहतर तो ये है तुम मुकम्मल इंसान बन जाओ, ना हो तो अच्छे आदमी तो बन जाओ। और हर एक ने यही कोशिश की है कि दुनिया के झंझटों से हटके किस तरह से हम अच्छे इंसान बन सकते। लल्ला का पेपर खराब हुआ, ताऊ जी ने हमको बुलाया कि बेटे इसका पेपर खराब हो गया और तुम फतेहगढ़ चले जाओ, हमने हम नहीं जाएंगे। बताया ना उनसे, गुरु उसका लिखते ही नहीं था, उसके बाद अपनी हॉकी उठाई खेलने चले गए। जब लौट के आए तो देखा वही कुर्सी पर बड़े दुखी बैठे हुए हैं, तो पूछा पिताजी आपको क्या बुरा लगा? अच्छा फिर भी जैसे कोई बड़ा भारी एहसान कर रहे हो। अच्छा आपको बुरा लगा, लाइए चले जाते हैं। फौरन एक बहन से कहे चाट पूड़ी बना देना और ये हो। चलते वक्त आपने फरमाया कि फलाने सत्संगी है उनके घर मत जाना, पहले नहा धो के समाधि पे चले जाना। ये बिल्कुल जबल था, बगल में कब्रिस्तान है। तो उन्होंने कहा बेटे वहां 5 बजे से पहले चले जाते हैं, तो बिल्कुल है कब्रिस्तान ही। और वो तो फर्स्ट टाइम हम गए, तो जब लौट के आते तो कुछ सच लिया करते थे। तो उनका ताऊ जी आप सुस्त क्यों हो गए, कि आप अल्लाह को प्रेम करते हो? ना बिल्कुल नहीं बेटे, उन्हें सड़क बात में सकता है शामलाल की औलाद थी। तो उन पर दुखी क्यों हुए? बोले दुखी तो इसलिए हुए कि दूसरे का दुख देख के तुम्हारा हृदय नहीं मिलता। तो इसका मतलब बेटे इस हृदय में अभी दीनता नहीं आई, हमारे दुख का ये कारण था। तो उनका वो तो इतने पुराने सत्संगी थे, आपने उनके यहाँ तो वहां जाते आराम से नहाते तो नहीं बेटे, 4 साल से फतेहगढ़ रह रहे हैं और शायद 4 मरते भी हमारे गुरुदेव के दरबार में सलाम करते हैं, तो ऐसे सबसे मिलने से क्या फायदा? देखिए कितना बड़ा वो था, उन्हें क्या मतलब था सलाम करें या ना करें। उन्होंने कहा बेटे इसलिए कहा, हो सकता था तुम जाते तो उन्हीं के विचार से फॉर्मेलिटी में जाते या वापस जाते, जो मैं नहीं चाहता। एक एक चीज उन लोगों ने प्रैक्टिकल करके दिखाई। कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जो प्रैक्टिकल ना हो, उसी को अपनाते चले जाते। और यही असली अभ्यास है। ओम शांति की माला, शिजरा पढ़ लेना, ये सब चीजें ये है कि उनको याद कर लेना, मन को इंगेज कर देना। असल चीज ये हम उन्हें कैसे फॉलो करते हैं और अपने गुरु की याद को किस तरह से करते हैं।